गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है, वार्म ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग आल्सो कई जगह पे। तो ट्रांसलेशन वर्क कर रहा है, चेक कर रहे हैं। कुछ एक कोट्स हम देखेंगे तो नॉर्मन विंसेंट पल ने कहा, अपने विचार बदले और आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। वह एक अमेरिकी पादरी था। एक और आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोट बताया था, और उन्होंने विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बताया, सब कुछ जो मायने रखता है उसे गिना नहीं जा सकता है, और जो कुछ गिना जा सकता है वह मायने नहीं रखता। तो ये इतना सत्य और मददगार है। और कुछ एक रिफ्लेक्शंस माना जो सीखा कल के क्लासेस से, कि अगर आपको लगता है कि भौतिक दुनिया ही मेन दुनिया है, तो हम जो रियली काउंट करता है उसको हम मिस करते हैं, वो है प्राइमरी वर्ल्ड, मेन दुनिया, मुख्य दुनिया। तो एक पारस और पत्थर के बारे में जो बताया था, तो जो हाथी का एग्जाम्पल लिया था कि पत्थर जो है वो शायद टेल को देख रहा है, और ये जो दुनिया है वो अनप्रेडिक्टेबल है, सदा के लिए परिवर्तित होती रहती है, तो वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। तो ये था कल की चर्चा का सार। तो हम इस चर्चा के द्वारा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऊंची चेतना। और जब हमें परिवर्तन का अनुभव होता है तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है, उत्साह होता है। तो आपके अनुभव सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और चार स्टेप मेडिटेशन हमने कल देखा था, वो बहुत ही अच्छा था। होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो अभी हम प्रशांत भाई को वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सभी को, गुड मॉर्निंग। हम कुछ एक मिनट पारस का अनुभव करते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि पारस के बारे में हमें और जानना है, तो सबसे पहले हम पारस के अनुभव में आते हैं। इस मोमेंट पर अगर मैं पारस बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, तो ये जो दुनिया है वो आप एक अलग रीति से देखेंगे और स्वाभाविक रीति से देखेंगे। तो वो जैसे कि आप ग्लासेस को उपयोग करते हैं, चश्मे का उपयोग करते हैं, और एक अलग चीज दिखाई देती है। तो पारस के द्वारा हम पूरी दुनिया को एक स्टोरी अर्थात कहानी के रूप में देखते हैं, और जैसे कि एक परफॉर्मेंस चल रहा है स्क्रिप्ट के आधार पर, स्टोरी के आधार पर थिएटर में। तो ये भौतिक दुनिया जो है वो एक बड़ा थिएटर है। परंतु वह भौतिक दुनिया सिर्फ वह एक रियलिटी नहीं है, परंतु उससे परे एक और दुनिया है जो वास्तविक दुनिया भी है। पारस इस बात को अनुभव कर सकता है, देख सकता है। वो एक मुख्य दुनिया है, वो थिएटर से अलग दुनिया है। थिएटर जैसे कि ग्रॉस है, स्थूल है और अस्थाई है, टेम्पररी है। और इस दुनिया से परे जो दुनिया है वो इस आकाश से भी परे एक और आकाश है, तो उसके जो रहवासी है वो सितारे जैसे लगते हैं, दिखते हैं। ये जो दुनिया है उसको कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, कहानी उस दुनिया को कुछ नहीं कर सकती। और क्या बाकी रहता है, वो है ऐसी दुनिया जहां पर एक शांति वाला आनंद हम अनुभव कर सकते हैं, और वहां पर जो रहते हैं उन्हें कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, और उन्हें कहानी से कुछ चाहिए नहीं। हम इस वास्तविकता को देख रहे हैं जो पारस के अलावा देख नहीं सकते। इस पारस के वातावरण में सच्चा सेल्फ, सच्ची पहचान जागृत होती है, और उसके लिए पॉइंट का अनुभव करना, खुद को पॉइंट का अनुभव करना, बिंदी अनुभव करना स्वाभाविक लगता है। उसके लिए इमोर्टालिटी माना अमरत्व का अनुभव करना स्वाभाविक होता है। वो अनुभव करता है कि वो एक लाइट का ही एक्सपांशन है, प्रकाश पुंज है, और उसे अनुभव होता है कि वो कहानी जो नीचे चल रही है उससे वो बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि चीजें आ सकती है, जा सकती है, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है उसके अंदर। इसीलिए हमने कहा कि वो जीवन जो है एक साइलेंट आनंद का है, शांति वाला आनंद है। उसे अम्यूजिंग लगता है कि ये जो यूनिवर्स है, दुनिया है, वो सकारात्मक है, आनंद की दुनिया, अमर दुनिया है, और ऐसी दुनिया जिसे कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति यहाँ पर नोबल है, काइंड है, वहां पर कोई भी प्रकार का दुख का कंसेप्ट नहीं है। और जो कहानी है, अगर आप कहानी को कहानी की तरह देखते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं रहती। स्टोरी में कहानी में क्या होता है, राजकुमार आता है, विलन आता है, ड्रैगन आता है, उसमें कोई गलती नहीं है। पारस जो है वो भौतिक दुनिया को जिस लिए उसे बनाई गई है उस तरह से वो देखता है। तो ये पूरा मैप, पूरा दृश्य वो देख सकता है। जैसे हम हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास विकल्प है इस भौतिक दुनिया को एक अलग रीति से देखना। हम इसी दुनिया को दूसरे ग्लासेस से, चश्मे से भी देख सकते हैं, वो है पारस का ऑप्शन। शुक्रिया। तो मैं वापस बोर्ड पर आ रहा हूं। हमारी शुरुआत की पोजीशन व्हाइट बोर्ड है। पहले दिन में हमने देखा कि कैसे हम बंधन बनाते हैं। हमने एक व्यक्ति का चित्र लिया था और राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट है, चीज है, और ये जो व्यक्ति है वो रस्सी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के साथ जैसे कि जुड़ जाता है। और फिर जैसे कि बंधन उत्पन्न होता है। और एक और समय है जहां पर वो रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, परंतु वो अपने मन से उस चीज से जुड़ा हुआ है। तो उसको क्या करना है? सिर्फ उसको एक एक्सपेक्टेशन उत्पन्न करना है, इच्छा उत्पन्न करनी है कि ये जो चीज है वो चली नहीं जानी चाहिए। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा है तो बंधन ज्यादा है। प्रूफ क्या है, साबिती क्या है कि बंधन है? कि अगर वो चीज चली जाती है तो वो आपको, वो टूट जाती है तो आपको वो फिकर उत्पन्न करेगा, चिंता उत्पन्न करेगा। तो ये प्रूफ है। दूसरी निशानी है कि वो समझने लगता है कि ये मेरी चीज है। और जैसे कि सरकार कहेगी ये तो सब आपका है, क्योंकि सरकार को भगवान ने जैसे प्रिविलेज दिया है कि आपको वो कहे कि ये आपका है, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो मेरा है। और कोई और कहता है कि ये आपका है, और जैसे ही आप मानने लगते हैं कि ये मेरा है तो आपको इसकी चिंता होने लगेगी अलग अलग रीति से। और हमने कहा कि जैसे कि पक्षी है जो रस्सी से बंधा हुआ है वो दुखी होगा। दुख शुरू होता है जब हम बंधन उत्पन्न करते हैं। और वर्तमान में हमने देखा कि मनुष्य जो है वो इनोसेंट है, निर्दोष है, और इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में है, और हम इतने इनोसेंट है, निर्दोष है कि हम बंधन उत्पन्न करते रहते हैं। फिर हम इस भौतिक दुनिया जो बॉक्स में दिखाई है उसमें फंस जाते हैं। व्यक्ति, पीपल, पोजीशन, पजेशन, मतलब रोल, उसमें रोल और पजेशन माना प्रॉपर्टी वगैरह में फंस जाते हैं। तो फिर हम गिरती कला में आ जाते हैं, और जैसे कि हमें नहीं पता है जो नहीं पता है, ऐसी स्थिति है। हमें नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पता है, इसलिए हम दुख का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक दुनिया में जो भी होता है वो उसे बॉदर करता है, उसकी चिंता होती है। क्यों उसे फिकर होती है? क्योंकि बंधन है, वो साइन है, निशानी है। अगर हमने इस प्रकार की गुलामी, बंधन माना गुलामी, अगर इस प्रकार की गुलामी हमने उत्पन्न की है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम उसको खुश नहीं देख सकते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति खुश रहे। तो ये हम इसको कहेंगे खुद के बनाए हुए बंधन। तो हम इस बंधन से एक्चुअली कंप्लीटली मना संपूर्ण रीति से मुक्त अनुभव कर सकते हैं जब हम समझेंगे इसमें बॉक्स में जो है वो हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम इस प्रकार से मुक्त है तो तुरंत ही हम, जैसे कि हमने कहा, साइलेंट जॉय, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। इंद्रियों से परे सुख। तो अभी समय अनुसार सभी गिरती कला में जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा चाहिए इस बॉक्स में। परंतु यहां पर हम ढूंढते हैं कि जितना आप मुक्त होते हैं तो आपको पता चलेगा कि शांति और खुशी आपके अंदर है, और जो खुशी है वो उसके मित्र के साथ आती है। जब आप सुरक्षित है तो आपको शांति, प्यार, आनंद सब कुछ अनुभव होता है। तो हम यह एक ऊंचा व्यक्तित्व अनुभव करते हैं, जिसके लिए हम ऊंची चेतना, हायर कॉन्शियसनेस का शब्द यूज करते हैं, ऊंची स्मृति। अच्छी बात यह है कि यहां पर 100% मेरी चॉइस है, मेरी पसंदगी है। जैसे कि जॉब को चेंज करना, संबंध को चेंज करना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपकी समझ और वृत्ति के ऊपर आधार है। पारस जो है वो बहुत बड़ी गिफ्ट है, सौगात है। उससे हम बड़ा मैप, बड़ा चित्र देख सकते हैं। तो आप यहां पर बहुत स्पष्ट रीति से देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये बड़ा मैप देखते हैं तो मुक्ति इजी हो जाती है, सरल हो जाती है। पत्थर जो है वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि पत्थर बुद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी को ही संपूर्ण दुनिया मानती है। और आप इसके ही बारे में चिंता करेंगे, कंप्लेन करेंगे, जैसे कि आपका पूरा बुद्धि जो है वो एक नैरो इंटेलेक्ट है, एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं। तो वो बंधन को फेवर करता है, ऐसा वृत्ति, ऐसी वृत्ति। तो जितना जितना हम पारस का उपयोग करेंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा। तो ऐसे एक एक मिनट का जो अनुभव है, ऐसा करते करते वो पारस बुद्धि स्ट्रांग होती जाएगी, नेचुरल होती जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तो आपको ये समझ में और मदद करेगा, समझने के लिए। और तो ये डॉटेड लाइन जो हमने देखी थी उसके ऊपर भी मुझे मतलब हम समझेंगे। तो पारस जो है वो समझता है कि वो खुद एक अदृश्य यात्री है, उसका एक परिवार है जो ऊपर की दुनिया में है, सभी अमर है, सभी नोबल है, काइंड है, सभी अच्छे हैं, सभी इक्वल है। और ये जो सभी जो नोबल है वो इस भौतिक दुनिया में आते हैं और जाते हैं, और उनकी ये जो यात्रा है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। जैसे कि आप पार्क में जाते हैं तो आप एक मेहमान हैं 2 घंटा, तो उसी तरह से ये जो अदृश्य राजकुमार है वो यहां पर अस्थाई रीति से मना टेम्पररी विजिट करता है। तो ये अदृश्य यात्री जो है वो एक अदृश्य एक्टर भी है, कलाकार है। तो वो कलाकार यहां ड्रामा में कला करने के लिए आता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति है, तो मैं दो नाम लेना चाहूंगा, किसको वॉलंटियर करना है? एक यान एंड गीता, दो एक्टर का नाम लेते हैं हम, तो वो चिल्ड्रन के ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं। तो गीता जो है वो कैमल का रोल प्ले कर रही है चिल्ड्रंस ड्रामा में, और यान जो है वो एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है, और प्रशांत जो है वो ड्रैगन का रोल प्ले कर रहा है। तो वो एक चिल्ड्रन ड्रामा है, तो ये वो ड्रामा में एक्ट करते हैं, ड्रामा में एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं वापस। तो गीता को पता है कि वो कौन है। वो अपना जीवन एंजॉय करती है, उसके पेरेंट है, उसका घर है, और वो ड्रामा में एक्टिंग करने जाती है, और उसे पता है कि वो कैमल का रोल प्ले करती है। और फिर वो घर वापस आ जाती है, तो अगर वो कैमल का जो पार्ट है अगर वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, मतलब आकर्षित करता है, और सब अगर कहते हैं कि आपका पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो थोड़े समय में वो अपने आप को कैमल मानने लगती है। तब समझना है कि उसने ये डॉटेड लाइन अर्थात अज्ञान की रेखा को क्रॉस कर लिया है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो है अज्ञान की रेखा, और फिर उसे याद भी नहीं है कि वो एक एक्टर है। फिर उसे समझ में नहीं आता है कि ये तो ड्रामा है। जैसे ही उसने लाइन क्रॉस की तो उस ये जो ड्रामा है वही उसकी दुनिया हो जाती है, और फिर उसे कंप्लेन होती है कि ये एलिफेंट मुझे परेशान करता है, मतलब इस प्रकार की कंप्लेंस रहती है। तो जैसे कि एक बड़ा कंफ्यूजन है, सीरियस कंफ्यूजन है। जैसे ही लाइन क्रॉस की तो वो खुद को कैमल समझने लगती है, तो फिर वो जो पार्ट प्ले करती थी उसे वो अपने खुद को ही पार्ट समझ लेती है, और सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो क्या हो रहा है, उसी तरह से हम सभी अदृश्य एक्टर है। आध्यात्मिक मॉडल ये कहता है कि हम सभी यात्री है, अदृश्य एक्टर है। हमारा खुद का घर है, हमारा फैमिली है, और हमारा खुद का जो सेल्फ है वो एक परफेक्ट है। और यहाँ पर जो नीचे है वो एक महान परफॉर्मेंस चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो जब हम एक्टर्स ड्रामा के अंदर एक्टिंग करते हैं, तो ड्रामा इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतना कन्विंस करता है, हमें आकर्षित करता है, तो हमें लगता है कि ये ड्रामा ही रियल वर्ल्ड है, और हम गिरती कला में आते जाते हैं। तो जैसे कि वो एक्टिंग करते हैं लेकिन अपने को कैमल समझ के, और वो अपने को शरीर मानने लगते हैं, तो उसे नहीं लगता है कि ये ड्रामा है। तो ये कैमल समझने से उसे लगता है कि यही मेरी दुनिया है। क्या आपको पता है कि जिसने ऐसी लाइन क्रॉस की है, कोई जवाब देगा? आप लिख सकते हैं चैट में। सभी, किसी ने जवाब दिया, हम सभी। कैमल क्रॉस्ड, तो इसीलिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के कंफ्यूजन का, मूंज का? तो धीरे धीरे हम इस कंफ्यूजन में खींचते आए, और मुझे व्हाइट बोर्ड में अभी वापस आना है। धीरे धीरे हम इसमें खींचते गए, आकर्षित होते गए कहानी में, तब जब जब तक हमने संपूर्ण रीति से हम इसमें नहीं फंस गए। जैसे कि हनी बी का एग्जाम्पल लिया था, मधुमक्खी का, वो हनी पॉट में कैसे फंस जाती है, उसी तरह से ये ड्रामा रूपी हनी पॉट में हम सब फंस गए। इसीलिए पारस जो है वो इतनी बड़ी सौगात है, वो हमें मदद करता है कि ये जो बड़ा मैप है और हर सेकंड आप इसको सिर्फ देखते हैं, आप बड़ा मैप देखते हैं, बड़ा चित्र देखते हैं, तो जब भी आप ये बड़ा मैप देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो आप अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो इस मिनट्स में, इस सेकंड्स में आप ऊपर गिरती, ऊपर चढ़ती कला में जा रहे हैं, अपवर्ड स्पाइरल। तो वर्तमान में हम सभी जैसे कि अपने को कैमल समझते हैं और जो भी जैसे एकदम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस चीज के लिए हम सीरियस हो सकते हैं, पिटी थिंग्स, जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इस ड्रामा के अंदर अपने को कैमल समझकर हम कैमल को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रोग्रेस देखते हैं। जैसे कि हम कुछ तो हमें ये सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है कि हम इस अज्ञान की रेखा से बाहर आ जाए। प्रश्न आया है, तो फिर आत्मा यहां पर दुनिया में क्यों आती है? हमने कहा कि ये जो अदृश्य यात्री है वो अदृश्य एक्टर है, और कोई भी जो प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, उससे अपना घर चाहिए, उसको खेलने के लिए मैदान भी चाहिए। सिर्फ टाइटल नहीं है प्लेयर, लेकिन उसको प्ले भी करना है। तो जहां पर उसे प्ले करना है, तो यहां पर भी अदृश्य प्लेयर, उनका घर है और उनके लिए मैदान है नीचे। परंतु उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, तो एक समय आता है वो वहां से फील्ड में आता है, कर्म क्षेत्र में आता है, जहां पर वो उसकी स्किल्स को एक्सप्रेस कर सके, दिखा सके। परंतु जो खिलाड़ी है वो मैदान में जाते हैं, वो गलत नहीं है, खेलने के लिए जाते हैं। तो कब वो सीन कमिट करता है, पाप करता है? क्यों, कब चीजें गलत हो जाती है? जब वो लाइन को क्रॉस करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। जब वो कंफ्यूजन में जाता है, मूंज जाता है, तब वो मोह उत्पन्न करता है, फिर वो इस ड्रामा में क्लेम करने लगता है, और यही जो कंफ्यूजन है वही उसका प्रॉब्लम है। जब वो समझता है कि ये मेरा बॉल है, खेलते खेलते उसे लगता है ये बॉल मेरा है, तब उसके लिए बंधन उत्पन्न होता है और मुश्किलें शुरू होती है। जब ये ये जो भौतिक वास्तविकता है वो भी एक सुंदर खेल है। तो जब पारस की बात करते हैं तो हम अपने घर को भी अप्रिशिएट करते हैं, महिमा करते हैं, और इस मैदान मन कर्म क्षेत्र की भी महिमा करते हैं। पर जब हम लाइन को क्रॉस करते हैं, रेखा को क्रॉस करते हैं, तब वो पूरा दृश्य बदल जाता है। एक रिक्वेस्ट है कि ब्रांचेस की स्टोरी रिवाइज करने के लिए कहा गया, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग में सुन लें, हम नई स्टोरीज कहानी सुनेंगे आज। क्या आप बता सकते हैं कि पारस और आत्मा के बीच में कनेक्शन क्या है, वो आप बता सकते हैं? हाँ श्योर। ये जो अदृश्य यात्री है, इसके तो ये जो अदृश्य यात्री है वो पारस के द्वारा ये अपनी खुद की दुनिया को देख सकता है। पारस बुद्धि के द्वारा वह देखता है। तो ये जो आत्मा है वो पारस के द्वारा दोनों दुनिया देख सकता है, और आत्मा जो है वही पत्थर बुद्धि के द्वारा सिर्फ भौतिक दुनिया को देख सकती है। जब वो पारस को उपयोग करता है तो वो एक अलग रीति से दृष्टिकोण से देखता है, और अगर पत्थर का उपयोग करता है तो वो अलग दृष्टिकोण से देखता है। मुझे पता है कि आप सभी होमवर्क कर रहे होंगे, आशा है। तो इस कहानी में ये जो एक रियल इंसिडेंट, हमारा पड़ोसी है, जैसे हमारे ही सामने एक पड़ोसी है, उसकी बात कर रहे हैं। एक लड़की थी तो वो अपने कुत्ते को वॉक के लिए ले जा रही थी। तो ये जो पड़ोसी का बगीचा था, वहां पर कैट थी, बिल्ली थी, तो ये कुत्ते ने बिल्ली को देखा और बिल्ली के पीछे भागने लगा, और जो बिल्ली है वो फ्लैप में जाने लगी और घर में चलने चली गई। तो कुत्ता जो है वो पुश करके कैट फ्लैप के अंदर घुस के फिर घर में चला गया। अभी अभी कुत्ता भी घर में था, बिल्ली भी घर में थी, और कोई घर में नहीं था। अभी बिल्ली को घर अच्छी तरह से पता है, तो वो जैसे कि एक शेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है, कबाड़ के ऊपर, कपबोर्ड के ऊपर। और अभी कुत्ते की जो ऊर्जा है, वो जैसे कि वो जंप कर रहा था, चिल्ला रहा था, बार्क कर रहा था और इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि बिल्ली ऊपर है, ऐसा आधे घंटा जैसे चलने लगा। तो अभी कुत्ता इतना एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर ये जो लड़की है वो हमारे घर पे आई, और देखने के लिए कि क्या हम इस घर को ओपन कर सकते हैं और कुत्ते को भगा दे। तो ये बहुत ही एक सुंदर बात है यहाँ पर, कि जैसे तो जैसे कि ये जो लड़की है वो आ, आ, उसको अच्छा टाइम देना चाहती है बिल्ली को, तो ये कुत्ता जो है वो बार्क कर रहा है, चिल्ला रहा है। मे बी वो शायद हो सकता है मर जाता, क्योंकि उससे पता नहीं है कि ये कितना कूद रहा है, कितना बार्क कर रहा है। और वो जैसे कि संपूर्ण रीति से भूल गया था कि उसका सुंदर समय था, और इस नदी नदी के पास। तो क्या क्या इस होशियार होशियार व्यक्ति इस कुत्ते से अलग है? हम सभी, हमारा सबका ऐसा सुंदर समय था, हमारा इतना सुंदर घर था, परम घर था, जहां पर जगह ही आनंद की है, शांति की है। ये एक वास्तविक है, परम सत्यता है। ऐसी दुनिया जो नुकसान से परे है, ऐसी दुनिया जो सच्चे परिवार की है, और ये जो होशियार नोबल आत्माएं, जैसे कि बिल्ली के पीछे घूम रहे हैं, और ये कैट फ्लैप, जो डॉटेड लाइन है वो कैट फ्लैप है, उसको क्रॉस किया, और जैसे कि इस ड्रामा के बॉक्स में कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने ये लाइन को क्रॉस किया, तो जैसे कि वो संपूर्ण रीति से भूल जाते हैं अपने इस सुंदर घर को, सुंदर फैमिली को, अपने वास्तविक अनुभव को, संपूर्ण रीति से वो भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ पता है कि वो, उन्हें सिर्फ जैसे कि बिल्ली चाहिए बस, इस बॉक्स। तो ये जो कहानी हमने सुनी बिल्ली और कुत्ते की, तो उससे ये बिल्कुल अलग नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। और अगर कोई डिफरेंस है, तो हमने एक से ज्यादा कैट फ्लैप, जो छोटा सा बखोल होता है, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। तो आप कब कहेंगे कि कुत्ता एक समझदार कुत्ता होगा, बनेगा? तो इस समय ये जो कुत्ता है, वो जैसे कुत्ता रहता है, जंप कर रहा है, बार्क कर रहा है, चिल्ला रहा है। आप उसको कब कहेंगे ये समझदार हो गया? जब वो इस रेखा से बाहर आ जाएगा, जब वो अनुभव करता है कि वो बिल्ली को कैच नहीं कर सकता, वो और ज्यादा उससे पीछे जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। भूलना नहीं है कि वास्तव में वो कौन है। तो अगर कुत्ता कैटफ्लिप को क्रॉस नहीं करता, तो वो समझदारी थी। हाँ, तो यहां पर भी इतना हम जैसे कि इस दुनिया में फंस जाते हैं कि हम सुंदर सत्य को छोड़ देते हैं, और तभी एक बड़ा कैओस माना कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर कुत्ता कहता है कि मुझे इस मैस से बाहर आना है, बहुत हो गया, तभी हम कहेंगे कि वो समझदार है। सिर्फ वहां रहना और कुत्ते रहना, तो जैसे कि वो समझदारी नहीं है। तो यहां पर जैसे कि एक ऊपर चढ़ती कला में जाना है, तो वो जैसे कि एक सिंबल है कैटफ्लिप से बाहर आने का। और एक और चीज महत्व की है हमारे लिए, ये एक फिनोमिना कि हमें ये धीरे धीरे, जैसे बिल्ली फंसाती रहती है, और हमारी जो बुद्धि है, स्पष्टता, वो जैसे कम होती जाती है, जितना आप उसमें फंसते जाते हैं। तो जैसे कि पेनल्टी है, नुकसान है उसमें, पेनल्टी आती जाती है। तो हमारे लिए पेनल्टी आवे, उसके लिए हम इसमें से बाहर आ जाएं। और वापस हम अपने सुंदर घर को टच करें और ढूंढ निकाले हमारी वास्तविक सुंदर सत्यता को, हमारी शुरुआत की स्थिति को। सिर्फ सुंदर ज्ञान नहीं, परंतु हमें अनुभव करना है ये, और तब हमारा भौतिक दुनिया के प्रति जो वृत्ति है वो बदलेगी। हम इस दुनिया में आएंगे उस शक्तिशाली स्थिति से, नहीं तो हम इस दुनिया में एक खालीपन से आते हैं, खालीपन की भावना से, और हम हमारे रूट्स माना जो मूल वतन है उसको भूल जाते हैं, मूल बात है उसको भूल जाते हैं, और हम यहाँ पर कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और कोई विचार है, शेयर करना है, आपको ऐड करना है? हम अभी विज्ञान के, विज्ञान से जुड़े हुए कुछ एक वीडियो से कनेक्ट करेंगे। पहले हम इयान स्टीवेंसन का वीडियो देखेंगे, और उसके पहले अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुछ एक प्रश्न है, क्या आप पृथ्वी का अनुभव है वो, जैसे किस इसको स्कूल कहेंगे पृथ्वी को, जो हमें ऊंची चेतना में ले जाएगी। दूसरा है, क्यों हमें इस अनुभव का, अगर हम वापस ही जाने वाले हैं तो ये अनुभव करने की क्या जरूरत है। फिलोसॉफी में ये प्रश्न किए जाते हैं और वो कहते हैं कि थियोरी में कुछ है खोए, वो वहां पे यहाँ आते हैं, कुछ एक यहाँ आते हैं, कुछ एक नहीं आते हैं, और जो यहाँ आते हैं वो पूछते हैं यहाँ क्यों आए, जो लोग नहीं आए हैं वो प्रश्न नहीं पूछते हैं वहां से। परंतु हमारा उत्तर है कि हम एक खिलाड़ी है और सभी यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए कभी न कभी, तो हम सिर्फ जैसे कि एक जाति है जो सभी एक्टर है इसमें, और सभी जैसे खिलाड़ी है, थोड़े समय के लिए, बड़े लंबे समय के लिए वो अलग अलग है, तो हम हमारी स्मृति में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे उसके बारे में ज्यादा। तो दिन के अंत में, तो सुबह में हम जब जागरूक होते हैं तो हम जैसे जॉब में जाते हैं वगैरह, तो जैसे कि एक यात्रा के बारे में है, तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वापस जाना नहीं चाहता, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसे कि हम जितना इसको अनुभव करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो और अनुभव करते जाएंगे, तो आगे हम और देखेंगे। आपको कोई इंट्रोडक्शन देना है वीडियो से पहले, तो कुछ एक चीजें मैं बताना चाहूंगा। तो अभी तक हम अदृश्य यात्री के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पूरी भौतिक दुनिया को जैसे कहानी के रूप में देखा, तो ये जैसे कि मेन नहीं है, प्राइमरी वर्ल्ड अलग है, मुख्य दुनिया अलग है, तो इसको हम एक कैसे हम ये समझे, ये अदृश्य यात्री कहां से आता है, तो कुछ एक चर्चा जो विज्ञान में और फिलोसॉफी में अस्तित्व धराती है, ताकि हमें थोड़ा ओरिएंटेशन मिले, समझ में आए, और इस वीडियो के दौरान कुछ एक, इस चर्चा के दौरान एकाग्रता की बहुत जरूरी है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर पूरी दुनिया है वो एक लाइन के द्वारा दिखाई है, यहाँ पर एक कैटरपिलर दिखाया है वो ये दुनिया को समझने का प्रयत्न कर रहा है। कैटरपिलर के पास एक ही सेंस ऑर्गन है, इंद्री है, इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया। तो वो सिर्फ वो एक छोटी सी दुनिया ही देख सकता है टच के द्वारा, वो सिर्फ टच के द्वारा अनुभव कर सकता है। तो ये जो दुनिया है उसमें मून से स्टार्स है, लेकिन कैटरपिलर को उसे पता नहीं है, जैसी है उसके लिए वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। और कुछ एक और प्राणी है जिस उनके पास और सेंसेस है, कर्मेंद्रिया है, तो और ज्यादा वो देख पाते हैं। और जब हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उनके पास पांच इंद्रिया है, और ये पांच इंद्रियों के द्वारा ये बड़ी दुनिया को देख सकते हैं और बड़ी दुनिया को देख सकते हैं। परंतु जो मनुष्य जिस दुनिया को देख सकते हैं वो ये पांच सेंसेस के अंदर ही देख सकते हैं, उसके ही द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स जो है वो जैसे कैटरपिलर को कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, ऐसे ही मनुष्य की सेंसेस को एक अनलिमिटेड वर्ल्ड है वो दिखाई नहीं देता। तो दुनिया का वो भाग जो सेंसेस के द्वारा हम नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमारे पास सेंसेस नहीं है। तो दुनिया का कुछ पार्ट ऐसा है जो हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा देख सकते हैं, वो है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। और जो दुनिया है वो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा नहीं एक्सेस कर सकते, वो है नॉन फिजिकल वर्ल्ड। विज्ञान जो परिवर्तन हुआ है, इवॉल्व हुआ है, विज्ञान की जो विधि है वो सेंस और सेंस ऑब्जर्वेशन और माना कर्मेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है उसके ऊपर आधारित है। तो विज्ञान की जो सिस्टम है वो नॉन फिजिकल पार्ट जो है वो देख नहीं, अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि उसका आधार सेंस ऑर्गन्स है। परंतु ये जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है वो एक वास्तविक दुनिया है, परंतु सेंस ऑर्गन की लिमिटेशन है कि वो देख नहीं सकती। और कुछ एक एनिमल्स है, जैसे कि हम पीजन्स के बारे में बात करते थे, ऐसे कंसेप्ट है होमिंग पीजन। अगर पीजन्स को 18 माइल दूर रखते हैं प्रयोग की स्थिति में, मतलब वो सुन नहीं सकते, सुगंध नहीं ले सकते, अगर आप 18 माइल दूर रखते हैं तो वो सही दिशा में अपने वही वृक्ष में जाएंगे और वही लैंड करेंगे। तो उनको फाइनल नेस्ट नहीं मिलेगी, उनका माला नहीं मिलेगा, परंतु वो सही दिशा में जाकर वही लैंड करेंगे। वैज्ञानिक को यही नहीं पता कि वो क्या ऑब्जर्व करते हैं जिससे वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो विज्ञान की सेंस ऑर्गन, मतलब वैज्ञानिक की सेंस ऑर्गन से वो इसे समझ नहीं पाती। मतलब पिजन्स के पास कुछ और सेंसेस है जो हमारे पास नहीं है। तो ये कुछ एक एस्पेक्ट ऐसे है जो नॉन फिजिकल है, मतलब कुछ अलग स्तर है दुनिया का। परंतु पिजन के लिए वो सरल है, हमारे लिए वो सरल नहीं है वैज्ञानिक को। तो कुछ एक चीज वो जान सकते हैं जो हम नहीं जान सकते, क्योंकि उनके पास जो सेंसेस है, कर्मेंद्रिया है, वो हमारे पास नहीं है। परंतु इनफ हमारे पास जानकारी है कि कुछ ऐसी है बात जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, और उसके लिए पिजन के पास वो सेंस है। तो हमारी जो पढ़ाई की सिस्टम है वो वही पढ़ाती है कि फिजिकल वर्ल्ड मेन है, भौतिक दुनिया ही मुख्य है। तो हो सकता है वो हमारा जो सच्चा प्रोग्रेस है वो ब्लॉक करे। तो अभी हम एक सरल प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, हमारा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। एक मैन है, मनुष्य है, वृद्ध है, वो 80 साल का है और वो कहता है कि मैं ही स्कूल में जाता था 17 साल पहले, 70 इयर्स पहले। तो उसने कहा कि मैं ही स्कूल में था और मैं वही मैं हूं, तो आप भी वही कहेंगे ना। तो मेडिकल पुरावा ये कहता है कि शरीर का जो एटम है और जो वृद्ध के शरीर में एटम है, अणु है, वो डिफरेंट है, अलग है, उसका कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। क्योंकि जैसे ही हम श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, शरीर में जो सेल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ब्रेन्स के मॉलिक्यूल्स है, हार्ट के मॉलिक्यूल्स है, कार्टिलेजेस, सब रिप्लेस होता रहता है, तो वो संपूर्ण रीति से बदल जाता है। सिर्फ एक बार नहीं लेकिन हजार बार 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 होता है ये प्रोसेस। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो जैसे कि 10^22 एटम्स 6 सेकंड के अंदर बदलते जाते हैं, तो इस समय तो ये 10+21 जीरोस ऑन दी, उतने एटम्स बॉडी में रिप्लेस होते हैं 6 सेकंड में। तो शरीर है वो एक अलग है, उसके मॉलिक्यूल्स अणु अलग है, परंतु व्यक्ति कहता है कि मैं वही हूं, तो ये कौन है? जब हम कहते हैं आई, तो हम ये शब्द उपयोग करते हैं आई, मतलब हमारे अंदर कुछ चीज है जो अनुभव करती रहती है। कल एक प्रश्न था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, काल्पनिक इंटेलिजेंस के बारे में। आप मशीन क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर अनुभव नहीं है, वो अनुभव नहीं कर सकता। माहिती है उसके अंदर, अनुभव करने वाला कोई और है। तो यहां पर हम उस आई को, मैं को एक्सपीरियंसर कहते हैं, अनुभव करने वाला। तो वो व्यक्ति इसलिए कहता है कि मैं ही स्कूल में था, मतलब वही अनुभव कर रहा है। तो वो कहता है अभी मैं यहाँ पर ऑफिस में हूं, तो वो जैसे कि एक्सपीरियंसर है। और ये जो अनुभव करता है उसके साथ साथ ये शरीर सब कुछ है, परंतु अनुभव करने वाला जो है वो अनुभवी है। ये तो ये कहाँ है एक्सपीरियंसर? वो मॉलिक्यूल्स में नहीं है, वो तो रिप्लेस होते जाते हैं। तो जो एक कांस्टेंट फैक्टर है वो है, वो जो अनुभवी है, एक्सपीरियंसर है, अगर वो फिजिकल लेवल पर नहीं है तो वो कहीं और तो होना चाहिए, तो वो सिर्फ नॉन फिजिकल लेवल पे हो सकता है। तो ये नॉन फिजिकल एक्सपीरियंसर है, वो अपनी यात्रा के दौरान जब हम अदृश्य यात्री का, अदृश्य खिलाड़ी का शब्द उपयोग करते हैं, तो हम इस छोटे से सितारे माना बीइंग जिसको आत्मा कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस हमारे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि हमारी जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो हमारे अनुभव के आधार पर है, हम क्या अनुभव कर रहे हैं। तो आपके अनुभव के आधार पर ही आपकी मेमोरीज होती है, और अनुभव जो है वो सारा विचारों के द्वारा होता है, उसके आधार पर आपकी आदतें बनती है, और अनुभवों के आधार पर आपके गुह्य टेंडेंसीज, संस्कार होते हैं। आप और दूसरे के बीच में जो फर्क है वो है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व अलग क्यों होता है? क्योंकि हर एक का अनुभव अलग होता है। तो इसीलिए मेन बात हम जो कर रहे हैं सार के बारे में, एसेंस, वो है हम जो है वो नॉन फिजिकल लेवल से आते हैं। तो सारे जो निर्णय है वो ये एक्सपीरियंसर करता है। तो लीवर कोई डिसीजन नहीं लेता है, हार्ट डिसीजन नहीं लेता है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं करता है, निर्णय करने वाला एक्सपीरियंसर है, अनुभवी है, जो अनुभव करता है वो है, और वो है अदृश्य है, नॉन फिजिकल है। जैसे कि मैं यहां पर कंप्यूटर उपयोग कर रहा हूं, माइक्रोफोन उपयोग कर रहा हूं, उसी तरह से अदृश्य यात्री ये शरीर को उपयोग कर रहा है। तो ये जो समझ है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन हम कर रहे थे, वैज्ञानिक की दुनिया में अगर आपको मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको पढ़े, प्रोफेसर जॉन एकल्स, वो एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो मतलब अभी नहीं है, उसको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, और तो वो ब्रेन को मतलब वो समझाता है कि जो विचार का फंक्शन है वो कैसे आत्मा के लेवल पर होता है और वो कैसे ब्रेन के लेवल पर ट्रांसफर होता है इंस्ट्रक्शन। तो वो कुछ क्वांटम फिजिक्स का मॉडल समझाता है वहां पे, कैसे हमारी साइक जो है वो फंक्शन करती है, चेतना कैसे, मतलब हमारी साइक है वो न्यूरल फंक्शन में ट्रांसफर होती है ब्रेन में। परंतु ये इनफ है जानना कि बहुत सारे वैज्ञानिक जानते हैं कि विज्ञान एक लिमिटेड बात बताता है, परंतु उसको जैसे कि नॉन फिजिकल डायमेंशन है वो भी समझना है। तो विज्ञान की जो विधि है उसमें विस्तार करने की जरूरत है। मैं अभी यहाँ पर खत्म करूंगा, और क्या आपको कुछ ऐड करना है? तो जैसे कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया, वो उस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जैसे कि मुझे लगता है कि वो एक यह एक एक्सपीरियंसर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो और कोई कमेंट्स नहीं है अभी, तो हम इस वीडियो पर जाएंगे। यह जो वीडियो है वो वर्जीनिया में एक साइकियाट्रिस्ट है, उसका नाम है इयान स्टेवेंसन। एक यंग इयान, वो एक साइकियाट्रिस्ट था, इयान स्टेवेंसन, कॉलेज में, कॉलेज हॉस्पिटल में, और एक लेडी थी, वो अपने 4 साल के बच्चे को लेके आई थी, और वो उसके पुराने पिछले जन्म के बारे में बात कर रहा था, छोटा बच्चा 4 साल का। तो उसने इस बच्चे की हिस्ट्री ली, जितना हो सके उतनी माहिती उसने ली, और जब इंफॉर्मेशन मिली ऐसे 40 फैक्ट जो है वो उसे मिले जो मैच करते थे वास्तविकता से। तो यहाँ पर उसने रियलाइज किया कि वो एक री इंकारनेशन का केस था। उसने यह केस को पब्लिश किया जर्नल में, साइकेट्रिक जर्नल में, और 1960 में। तो बहुत सारे लोगों
उनको ग्रांट मिलती थी, मनी मिलती थी, और इस पर के बारे में रिसर्च करने में, खोज करने के लिए, ताकि वो इसकी खोज करके दुनिया को बता सके। उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूशन भी खोला इसलिए। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी पढ़ाई करी, खोज की, और उस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने बताया। इयान्स स्टीवेंसन ने शरीर छोड़ दिया है, मगर उनका इंस्टीट्यूशन अभी भी चल रहा है। उनके पास 26,000 के करीब केसेस हैं जो कि अभी भी वो स्टडी कर रहे हैं, जहां पर कि बच्चे बताते हैं इन केसेस में कि वो पिछली लाइफ में कहाँ थे, क्या थे, और वहां की सिचुएशन बताते हैं। वहां एक छोटे बच्चे ने बताया, और उसने अपने पूरे डिटेल्स बताया कि मैं कहाँ रहता था, और वो क्लियरली जानते हैं, उनको याद है कि वो पिछले जन्म में कहाँ थे। तो उसको प्रूफ भी किया गया। अगर वहां पर 26,000 केसेस हैं स्टडी करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं ये कितना मजेदार होगा, और ये सब कितना हमको पुनर्जन्म के बारे में पक्का करता है। एक माता बताती है कि उनको स्वप्न आया कि उनको एक बीमार आदमी आता है और उनको बताता है कि मैं आपके यहाँ पैदा होऊंगा। और ऐसे किस्से बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, और ऐसा होता है कि ये जो किस्से होते हैं वो बहुत ही क्लोज रिलेशंस में, जो पिछले जमाने के संबंधी हैं, वही उनके यहाँ आते हैं। मगर पेरेंट्स जो है वो समझ जाते हैं कि बच्चा जो है पिछले जन्म के बारे में बात कर रहा है, और इसको एविडेंस के साथ प्रूफ भी किया गया है। और यहाँ सपनों में भी बातें हो जाती हैं। ये भी एक अलग तरह की स्टडी है, एक तरह की पढ़ाई है, जहाँ चेतना में बच्चे के रहता है कि वो पिछले जन्म में क्या था। एक एक जन्म से दूसरे जन्म में वो अपनी यादें ले जाता है, और वो इस यात्रा तो ये प्रूव करता है कि हम एक यात्रा पर हैं, जहां हम शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है, पैटर्न भी है, जिसमें कि बच्चे बताते हैं कि जहां की 2 साल के बच्चे जब बोलना शुरू कर देते हैं, तब वो पिछले जन्म की बातें करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। 2 साल की उम्र तक उनको बहुत क्लियर रहता है कि ये आत्मा कहाँ से आई है, पहले कहाँ थी। उनके पास सबके सब सीक्रेट्स होते हैं, उनको पता होता है कि वो कहाँ थे, और 6 साल की उम्र तक उनको याद रहता है, और धीरे धीरे वो भूल जाते हैं क्योंकि वो उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। इयान स्टीवन का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत केसेस होंगे, हमारे सामने तो बहुत कम है। ये पिछले जन्म की लाइफ के बारे में बहुत केसेस हो सकते हैं, और वो 2 साल 3 साल की उम्र तक बात करते हैं, और 6 साल की उम्र तक इसके बारे में भूल जाते हैं। और उनको यादें रह जाती, कुछ को यादें रह जाती हैं कि पिछले जन्म की कुछ समय तक। एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में इयन स्टेवन के साथ बातचीत हुई और उसमें उन्होंने ये कहा, स्टीवेंसन ने 100 से अधिक केसेस के बारे में पढ़ा है, उनके पास 15 केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे के पास बर्थ मार्क है और ये बर्थ मार्क पिछले जन्म से संबंधित हैं। जैसे कि एक बच्चे के निशान है बुलेट एंट्री का, जो कि उस बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में उसके यहां से गोली उसके अंदर घुसी थी और दूसरी तरफ से निकल गई थी, तो वो कान के पास से निकले थे। और बच्चे का जो कान जो है वो देखिए कैसा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे कान के साथ वो बच्चा पैदा हुआ, वो एक किसान के यहाँ पैदा हुआ टर्की में। और हुआ क्या था कि पिछले जन्म में वो एक किसान के यहाँ पैदा हुआ था और वहां पर वो घूम रहा था और साथ वाले फार्म से एक किसान ने किसी जानवर को मारने के लिए गोली चलाई जो उसके बिल्कुल कान के पास से निकल गई। उसके कान के पास से गोली उसके अंदर गई तो उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो 10 दिन के बाद मर गया था। और ये एक टर्किश इंसान का स्थल दिखा रहे हैं कि वो पिछले जन्म में कैसे मरा था। तो अगले जन्म में वो उस ऐसी स्कल खोपड़ी के साथ पैदा हुआ जो अच्छी शेप में नहीं था, जैसा कि हम सबका होता है, और उसको याद था कि उसकी जान कैसे गई थी। ये बर्मा का एक इंसान है जो जानता है, याद है उसको कि पिछले जन्म में उसको क्या हुआ था, कि पिछले जन्म में उसको फांसी मिली थी मगर 2 बार फांसी देने पर भी वो गलत हो गई। और आप पिक्चर में देख सकते हैं अगले जन्म में वो बिल्कुल ठोड़ी के बिना ही पैदा हुआ, चिन्ह के बिना ही पैदा हुआ। आप ध्यान से देखें, ठोड़ी का बिल्कुल जरा सा ये निशान है क्योंकि हैंगिंग के टाइम पे पिछले जन्म में उसका ये दब गया था। आप टेक्स्ट बुक्स में आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसके बारे में। एक उत्तरी भारत में एक बच्चा जो है वो गाय का चारा काटने वाली मशीन में उसका हाथ आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है, उंगलियां कट जाती हैं। तो कुछ ही दिनों बाद वो पास के गांव में पैदा होता है और उसकी उंगलियां नहीं होती हैं। बहुत आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाला है ये कि बच्चों को पिछले जन्म की याद रह जाती है क्योंकि उनको पिछले जन्मों में कहीं चोट लगी है या कोई दुख पहुंचा है और वो उसको याद रखते हैं अगले जन्म में भी। इयन स्टीवेंसन की बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब पैदा होने के समय के जो डिफेक्ट होते हैं उनके ऊपर उनकी किताब है। उनके पास बहुत सारे 100 से भी ज्यादा केसेस जहां की अलग अलग तरह की चोटें हैं उनके शरीर पर, चोटों के निशान हैं उनके शरीर पर। एक फीमेल, एक लेडी औरत, उसको 27 बार किसी ने चाकू से उसका मारा गया। तो वो उसी गांव में पैदा हुई और उसकी पीठ पर, जहां की उसको पिछले जन्म में 27 बार छुरा घोंपा गया था, लाल रंग के उसके लाल रंग के उसकी बैग के ऊपर निशान है, और वो बताती भी है कि मुझे किसने मारा था। एक सीरिया में एक ऐसा ही केस है, एक लड़का उसने पुलिस को बताया कि पिछले जन्म में उसको किसने मारा था, और ये न्यूज में भी आया था, हो सकता है आपने सुना होगा इसके बारे में। ये एक ऐसा केस है जहां लड़के की इंफॉर्मेशन देने पर कि उसने पुलिस के बताया कि पिछले जन्म में उसको किसने मारा था, और ये भी कि कहां पर वो औजार जिससे उसे मारा गया था, आम उससे मारा गया था, वो कहां छुपा है। तो वो पुलिस ने ढूंढा और एक्यूज को पकड़ा जिसने मारा था, और उसको सजा मिली, उस पर केस चला और उसको फिर सजा भी मिली। ये पुनर्जन्म का ये केस भी न्यूज में था, और ये मेडिकल फैकल्टी से भी ऐसे केसेस आते हैं। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ, तो यहाँ समझ में आता है कि हम कौन है, अदृश्य यात्री हैं। और ये कोई संभावना नहीं है जिसको कि आप विश्वास कर लें, आपके सामने एविडेंस है, और हमको समझना है कि हमको अपने अंदर चेंज लाना है, और सूक्ष्म रूप से। और इस कहानी में, स्थूल वतन की कहानी में, हम जहां रह रहे हैं, हम कहां हैं, और हम यहां पर पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इसको नकारते हैं, और क्यों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, कि हम समझें कि अदृश्य यात्री कौन है। और यही ना समझने की वजह से ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी जिंदगी में आते हैं, और यही हमको अपसाइड डाउन, नीचे की स्पाइरल में नीचे की तरफ ले जाता है। अभी आप बोर्ड रूम्स में जाएंगे, उससे पहले अगर किसी को कुछ कमेंट करना है या कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। ये मेडिकल ऑब्जर्वेशन जो एन स्टीवेंसन की है, इतने क्लियर हैं। अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो अगर किसी को हमें ये समझाना हो जो नया हो यहाँ पर, तो उसको कैसे समझाएंगे। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हमारा वो जो माप चित्र है उससे हमको समझाना शुरू करना चाहिए किसी नए नई सोल को, और फिर बाद में आप अपने अनुभव बताते रहे तो इससे आप किसी को समझा पाएंगे। एक प्रश्न है, क्या आपका कहना है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर है जो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाती है। ये प्रशांत भाई कह रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसा होता है। जैसे कि एक इंसान, यहाँ पर एक शरीर है, उसमें एक इंसान की डेथ हुई, उसने शरीर छोड़ दिया, और फिर यहाँ पर एक बच्चे की शरीर है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है कि एक यात्री इन दोनों में कॉमन है, स्पेशली टाइम ऑफ डेथ के टाइम पे क्या होता है इस शरीर में इस संसार में उसके लिए। संस्कार और आदतें जो हैं वो सूक्ष्म रूप से होती हैं आत्मा पर और उसके इम्प्रेशंस बन जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने अपनी चाबी खो दी, आप सोचते रहते हैं कि कहाँ गई, कि कहाँ रख दी, आप भूल गए हैं। मगर आपकी अगर उंगली कट के गिर जाए तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने एक उंगली खो दी। यहाँ पर ऐसे ही ये शरीर जब छोड़ती है आत्मा तो उसके सारे इम्प्रेशन उस जन्म के उसके साथ जाते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, सब तरह के संस्कार आपसे उसके साथ जाते हैं। और ये यात्री और यहाँ पर हम बच्चे में देखते हैं कि उसके अंदर जो संस्कार है वो आते हैं, वो किस तरह की है उसकी, जो संस्कार वो पीछे से लेके आई है उसी हिसाब से वो उस बच्चे के शरीर में उसी तरह की उसके संस्कार और आते हैं, वो उसी तरह का व्यवहार करता है। धन्यवाद। ये सोचने की बात है, सबको इसको समझना होगा, फिर इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम बोर्डरूम के लिए चलते हैं जहां हम बात कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और क्वेश्चन यही होगा कि साइंस आपको ये सब समझने में कैसे मदद करती है। आप कोई क्वेश्चन देना चाहेंगे या इसी में कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्वेश्चन के साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आप बंधनों से कैसे छूट सकते हैं। प्रशांत भाई कह रहे हैं ये जो कैटफ्लैप से का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली अज्ञानता का है, बॉन्डेजेस से कैसे छूटेंगे और अज्ञानता से कैसे बाहर आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि साइंस कैसे हेल्प करती है कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे समझें, और ये इनविजिबल जो आयाम है उसको कैसे मैं समझूं, और कैटफ्लैप मतलब मीनिंग अज्ञानता से बाहर। आपका वापस स्वागत है। अच्छा था बोर्ड रूम में आप लोगों ने डिस्कस किया। एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। वो अपनी कुछ सेशन गीता दीदी अपने अनुभव शेयर करेंगी। आपका स्वागत है गीता दी। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर, और उनको विश्वास है कि हम सब ने जो कुछ भी सुना वो बहुत अच्छा था और कितना आश्चर्यजनक था, और ये हमको हेल्प करेगा हमारे स्वपरिवर्तन में, और ये भी कि हम क्या सोचते हैं ये कितना मैटर करता है, ये आपको क्लियर करेगा। जैसे कि एक इंसान अपना अपनी उंगलियां खो देता है उसमें मशीन में, और अगली बार बच्चे में के का जन्म होता है तो वो बिना उंगलियों के पैदा होता है। कितनी हैरान करने वाली बात है। कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम कहाँ याद रख पाएंगे कि हम क्या हमने इस पूरे जन्म में लिया, क्या अगले जन्म में होगा। हमारे लिए ये बहुत ही शक्तिशाली लेसन है, शिक्षा है कि हम इससे कुछ सीखें। और यहाँ हम ये एक मिनट के आत्मा के ध्यान बनाने के क्षणों को बढ़ाए, उससे अपने अपने स्वमान में, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो, और वो जो अज्ञानता की रेखा है उसके अंदर ना चले जाए, और अगर हमको लगता है कि हम अज्ञानता के पीछे रेखा के पीछे हैं, तो बहुत जल्दी एकदम से अपने आप को पारस का प्रयोग करके याद दिलाएं कि हम कौन हैं, क्या है और यहाँ क्या करने आए हैं। वो हमको वापस उमंग उत्साह में ले आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है एक्सपेक्टेशन वाला, जो कि शुरू में भी हमने लिया था, तो यही एक्सपेक्टेशंस हमारे बंधन बढ़ा देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जा पूछना चाहते हैं, और जो बोर्ड रूम में डिस्कशंस हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वो शेयर करना चाहे तो आए। तो प्रशांत भाई का वापस स्वागत करते हैं, गीता बहन को धन्यवाद कर रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। कि आपके शरीर के ऊपर कुछ निशान आ जाते हैं, कि ये अदृश्य यात्री जो है वो स्थूल निशान कैसे पैदा कर सकता है। मैं इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहूंगा कि कैसे ये निशान बनते हैं। ये एक परछाई भी पैदा कर सकते हैं पानी में, किसी समुद्र में, जैसे कि एक हवाई जहाज जो है उसको समुद्र के अंदर नहीं जाना पड़ता अपनी परछाई बनाने के लिए। इसी तरह से अदृश्य यात्री जो है जो उसके अदृश्य यात्री के माइंड में है, वही उसके शरीर पर भी प्रभाव डालता है। जैसे कि रिसर्च पर पता चला है कि कैसे ये विचार इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये विचार हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं और फिर इलेक्ट्रिक वेव जो कि एक स्थूल पर वेव है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें बदल जाते हैं। ऐसे ही ये एक फिनोमिना है जिसमें कि सोल के अंदर जो संस्कार होते हैं या कोई भी इम्प्रेशंस होते हैं वो स्थूल में अगले जन्म में आ जाते हैं, जैसे कि गीता बहन ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं जो प्रेजेंट में जो कि हमारे फ्यूचर को ठीक बना दे, अच्छा बना दे, हेल्दी बना दे। प्रशांत भाई कह रहे हैं जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इसी पर आधारित है कि हम चाहते हैं कि वो कैट फ्लैप यानी कि अज्ञानता की रेखा से हम बाहर आए, अपने आप को जाने कि हम अदृश्य यात्री हैं, हम बहुत नोबल हैं और उसके इम्प्रेशंस आत्मा के अंदर, अदृश्य यात्री के अंदर ये इम्प्रेशंस जो है पूर्णता के हैं, संपूर्णता के हैं। और जब ये उसके अंदर होते हैं तो मृत्यु के बाद भी उसके अंदर ये संस्कार रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी खोती नहीं है, कोई भी बंधन क्रिएट नहीं किए जाते, बनाए जाते, अंदर ही अंदर आत्मा को पता है कि वो कुछ भी खो नहीं सकती। जिंदगी में शांत पूर्ण रूप से उसके अंदर ये चलता रहता है कि वो कौन है, कि वो अदृश्य यात्री है और उसकी अदृश्य यात्री की ये परछाई भी उसके ही जैसी होगी। और अगर ऐसा कोई इम्प्रेशन है कि मैं कुछ खो रहा हूं जैसे कि ये उंगलियां, तो ये इम्प्रेशन अगले जन्म में लॉस का, कुछ खोने का इम्प्रेशन रहेगा। कोई और कमेंट करना चाहते हैं कि हम ये जो अदृश्य निशान जो है उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? ये पूरा खेल ही होता है नए संस्कार बनाने का, खेल है नए संस्कार बनाने का। अगर आप बड़े मैप को देखें, पूरे मापचित्र को देखें और पारस की निगाह से देखें तो आप पूरी पिक्चर को देख सकते हैं कि अब हम नए अनुभव पैदा कर रहे हैं, नए संस्कार बना रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि एक स्तर पर हम सबके सब एक समान है, कहानी में हम अलग हो सकते हैं और यहाँ पर हर कहानी का शुरुआत भी है और अंत भी है। और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर ही न्यू इम्प्रेशंस बनाते हैं, तो अब इस समय में हम पारस का इस्तेमाल करके नए और अच्छे संस्कार इम्प्रेशंस बना रहे हैं। अभी आपके सामने कोई परिस्थिति आती है तो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप उस परिस्थिति को देखते हैं और हर स्थिति को आप ऐसे ही लेते जैसे कि जो, क्योंकि ये इस कहानी में है जो स्थूल वतन पर चल रही है और ये सत्य नहीं है। जब आप समझ जाते इस बात को तो आप इस कहानी को, इस जोक को अलग ही तरह से देखते हैं। जैसे कि बेलिंडा बहन ने भी कहा कि यह हमारी संभावना पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको देख सकते हैं। ये विचार जो है वो अनुभव के हैं या इस कहानी के हैं? प्रशांत भाई कह रहे हैं ये अनुभव पर डिपेंड करते हैं, मगर यहाँ पर जो कर्म हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मगर सोल ही उनको अनुभव करती है। हर चीज का इस्तेमाल होता है, माइंड का, ब्रेन का, मन का, सब चीजों का इस्तेमाल होता है। जो अनुभव के एक्शंस हैं, कर्म के जो अनुभव हैं, वो सोल पर रहते हैं। अगर हमको पता है कि हम वापस कैसे जा रहे हैं, जाना है हमें, तो क्या हम अज्ञानता की रेखा को ना पार करें? ऐसा हो सकता है? प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हम हमेशा जोर डालते हैं इस बात को कि हम यहाँ पर खेल के लिए आते हैं, खिलाड़ी की तरह, तो सब अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के अनुभव से आते हैं, तो उनमें से कुछ इस कैट फ्लैप या अज्ञानता में जल्दी चले जाते हैं। और इस अज्ञानता की रेखा के पार जाना कोई जरूरी भी नहीं है, मगर यहाँ पर हम फिसलती हुई जमीन पर हैं और इस खेल में खेलते खेलते हम जानते हैं कि एक नीचे की तरफ जाती हुई कुंडलिनी है जिसमें कि हम नीचे जा सकते हैं, मगर कोई भी इसको चूज ना करे, किसी की ये चॉइस ना हो, वो चुने ना कि मुझे नीचे की तरफ को जाना है, मेरे को इस कैट फ्लैप से, अज्ञानता की रेखा से बाहर निकालना है। क्या हमारा जो स्थूल जो कर्म है वो हमको थका देते हैं? जहाँ की पास्ट लाइफ में अगर हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी रीडिंग करते हैं, तो क्या वो हमें थकाता है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं ये देखना कि आपने इसको कैसे क्रिएट किया है, बैड हैबिट या गुड हैबिट की तरह। आज की जिंदगी इसके इसके जो एक्सप्रेशन है वो कल आने वाले कल पे होंगे। एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा में, ये आध्यात्मिक मापचित्र में पास्ट जो है उसका प्रभाव है प्रेजेंट पर। और ये बहुत अच्छा है कि हम यहाँ समझ रहे हैं कि हम कैसे हम अच्छे अच्छी आदतें, अच्छे अनुभव क्रिएट कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी अज्ञानता की रेखा को पार कर लिया है, आप इतनी आसानी से लोगों को बदल नहीं सकते हैं, और वो स्पाइरल जो है नीचे की तरफ को चलता चला जा रहा है, लोग गिरते चले जा रहे हैं, जिससे कि टीचर बताता है कि आप अपने चरित्र को कैसे सुधारें, कैसे आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, मगर अल्टीमेटली होता क्या है, वो हो जाता है कि आप कैसे प्रिटेंड करें, कैसे बहाना करें कि आप बहुत अच्छे हैं। मगर यहाँ पर हमको पारस को जानना जरूरी है कि पारस का प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके कैसे हम नोबल बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि अब हम जानते हैं कि हम कैसे रोल को भी सुधार सकते हैं, कैसे हम डिटैच रह सकते हैं पास्ट से, और हमें कुछ भी ऐसे लोगों को नहीं बताना है कि, समझाना नहीं है कि वो कैसे हमारे रोल को लाइक करे, पसंद करे। ये हर किसी की इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस है, तो वो कैसे और किस तरह से हर परिस्थिति को लेता है, अगर किसी किसी के पत्थर बुद्धि ही आगे आती है। वो गलत काम करते हुए भी सोचता है कि वो गलत काम करते हुए भी प्रोग्रेस में है, उसके लिए ये अज्ञानता में भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस उसे दिखाई देती है। मगर वो जिसको कि पूरा मापचित्र का पता है, वो अपने पारस का इस्तेमाल करता है, उसको ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोच समझकर अपने निर्णय लेता है और उसके निर्णय उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। सोल शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, मगर उसके अंदर ये थॉट्स विचार कैसे आते हैं? विचार सोल से आ रहे हैं, फिर भी सोल जो जिसने ये प्रश्न किया, एक बार फिर से ये प्रश्न को दें। अभी कुछ मिनट हम अनुभव के पैदा करते हैं। जब हम सब समझ गए हैं तो हम इस कंट्रास्ट को देख सकते हैं पारस और पत्थर के। और जब हम पारस का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी मेडिटेशन बहुत आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं एक तरफ तो ये कहानी चल रही है और वहां पर सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रशांत बात कर रहे हैं, ये भी स्टोरी का ही पार्ट है। और उसी समय पर हम पूरी तरह से चैतन्य हैं कि हम जानते हैं कि हम इस कहानी का हिस्सा नहीं हैं और ये दुनिया जो हमारी अपनी है, ये अलौकिक है, सूक्ष्म है, जैसे कि आकाश का आयाम। और ये अदृश्य यात्रियों का घर है, परिवार का अपना घर है। ये दुनिया समय से पार है, अविनाशी है, यहाँ किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं होता, सबके सब अजर अमर है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब नुकसान से परे हैं, छोटा सा भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अदृश्य यात्री और अदृश्य खिलाड़ी, इस अदृश्य खिलाड़ी को यहाँ पर चल रहा खेल बिल्कुल नॉर्मल लग साधारण लगता है। उसको जानता है कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कहानी जो यहाँ स्थूल वतन पर चल रही है, ये भी बहुत ग्रेट स्टोरी है। और जब ये समझ जाते हैं तो वो इस कहानी से क्या सीखता है कि वो इस दुनिया से, इस कहानी से एकदम स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग है, चैतन्य है, कि उसकी दुनिया सूक्ष्म है। और ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम याद रखते हैं कि वो सुंदर सत्य उस अदृश्य यात्री का धन्यवाद। हम सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए रिपीटेडली उसको अनुभव करते हैं और फिर सार में आ जाते हैं कि हम कौन हैं। और ये ध्यान के क्षण जो हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं हमको उसमें आने के लिए। ऐसा क्यों है कि हम अपने पिछले जन्म को याद नहीं रखते? इयन स्टीवेंसन ने बताया कि जिनको ये याद रहता है कि जैसे जैसे नए नए संस्कार आते हैं तो हम पुराने संस्कारों को भूल जाते हैं, इसी तरह से हमको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। छोटी एज तक उनको याद रहता है, जैसे कि 2 साल तक, और जैसे ही वो बोलने लगते हैं नए नए इम्प्रेशन आने लगते हैं तो वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे या कोई प्रैक्टिस करने के लिए? प्रशांत भाई कह रहे हैं प्रैक्टिस जरूर करना है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कैसा लगेगा आपको जब आप 100% अपने पारस को यूज करते हैं। आपका क्या अनुभव होगा? आपको कैसे दिखाई देगा? आप कैसा समझेंगे? ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए। और प्रशांत भाई कह रहे हैं जितना हम पारस को यूज करेंगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफा है ये पारस। थैंक यू आप सबका। कोई क्वेश्चंस हो आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं, कल ले लेंगे। धन्यवाद।